ஓம் சாந்தி. குட் மார்னிங். சுபஹ் கி பிரம்ம முஹூர்த் கி ஜோ ஹமாரி எக்ஸர்சைஸ் தி மன் புத்தி கி மெடிடேஷன் கே த்வாரா ஔர் அபி ஹம்னே ஃபிசிக்கல் பாடி கி பி எக்ஸர்சைஸ் கி தோ தோனோ எக்ஸர்சைஸ் கா ஆனந்த் லியா. பிரம்ம முஹூர்த் கா பி ஆனந்த் லியா ஆப்னே. ஆப்மே சே கித்னே ஹே ஜோ சுபஹ் ஆ பாயே தே. பஹுத் அச்சா. யே பஹுத் சுந்தர் ஆப்கோ யே மௌகா மிலா ஹே யஹாம் ஜ்ஞான் சரோவர் மே பிரம்ம முஹூர்த் மே ஸ்வயம் கே சாத் பி மிலன் மனானா எக் ஆத்மிக் ரூப் மே பிரகிருதி கே பி சுந்தர்தா கோ வைப்ரேஷன்ஸ் கோ ஃபீல் கர்னா ஔர் யே சமய கி ஜோ விசேஷதா ஹே ஜஹாம் மன் புத்தி கோ சஹஜ் ஹி பரமாத்மா கே சாத் கனெக்ட் கர்தே ஹே யே எக் பர்சனல் டைம் ஈஸ்வர் நே ஹமே சபி கே லியே தியா ஹே. ஜெய்ஸ் கிசி கோ மில்னா ஹே தோ ஹம் உன்கோ பூச்சதே ஆப்கே லியே சப்சே சஹஜ கன்வீனியன்ட் டைம் கௌன்சா ஹே ஜஹாம் பூரா சமய ஹமே தே சகேங்கே. ஐசே ஹி பரமாத்மா நே அப்னே சாத் மிலன் மனானே கா ஹமே சப்சே சுந்தர் சமய பிரம்ம முஹூர்த் கா தியா ஹே ஔர் யஹாம் ஆப் இஸ்கா லாப் லே சக்தே ஹே. கர் ஜாகர் பி ஃபிர் இஸ்கா தோடா தோடா பிரயோக் கீஜியேகா. ஜெய்ஸே ஆப் சென்டர் சே ஜுட் ஜாயேங்கே ஔர் ஃபிர் ஹமாரா ஜோ யே ராஜயோக கா கோர்ஸ் ஹே உஸ்கே குச் செஷன்ஸ் ஜோ பாக்கி ஹே வோ ஆப் கம்ப்ளீட் கர் லீஜியேகா. ஔர் கம்ப்ளீட் கர்னே கே பாத் ஜோ ஹமாரி டெய்லி ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டடி ஹே ஜிஸ்மே ரோஸ் பரமாத்மா ஹம்கோ சிக்ஷா தேதே ஹே சமஜ் தேதே ஹே சக்தி தேதே ஹே பியார் தேதே ஹே கைட் கர்தே ஹே சாத் கா அனுபவ் கராதே ஹே தோ வோ ரோஸ் கி ஜோ சிக்ஷாயே ஹே உஸ்கோ பி ஆப் சுன்னா குச் சமய பஹலே கியோகி வோ பாஷா பரமாத்மா கி ஹே ஔர் ஆத்யாத்மிக் பாஷா ஹே தோ வோ ஷப்த ஷாயத் ஷுரூ ஷுரூ மே ஆப்கோ தோடே நஹீ பி சமஜ் ஆயேங்கே தோ சென்டர் பர் ஜோ பஹனே ஹே வோ ஆப்கே சாத் பேட் கர் தோடா அலக் ஆப்கோ வோ முரளி ஜோ ஹே ஹமாரி டெய்லி ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டடி சமஜாயேங்கே லேக்கின் உஸ்கே ஆதார் சே ஹம் ரோஸ் பரமாத்மா கே சாத் இஸ் சமீப் சம்பந்த கோ அனுபவ் கரேங்கே ஔர் சாரே தின் கே லியே பரமாத்மா பிதா சே ஜோ சக்தி ஹமே லேனி ஹே ஜோ ஹமே கைடன்ஸ் லேனா ஹே ஜோ ஹமே பிராப்தி கா அனுபவ் கர்னா ஹே வோ சஹஜ ஹோ ஜாயேகா. ஹர் தின் ராஜயோக கா தோ அபியாஸ் ஹம் கரேங்கே லேக்கின் மன் புத்தி கோ குச் நவீனதா சாஹியே. நவீனதா சாஹியே நா ஆத்மிக் ஸ்மிருதி தோ ஹம்னே சமஜ் லியா கி சோல் கான்ஷியஸ் ஹோனா ஹே அப்னே ஆப் கோ ஆத்மா சமஜ்னா லேக்கின் உஸ்மே பி குச் நவீனதா ஹோ விச்சாரோ மே நவீனதா ஹோ அனுபூதி மே நவீனதா ஹோ கிரியேட்டிவிட்டி ஹோ தோ ரோஸ் கே ஹமே ஜோ யே முரளி ஹே டெய்லி ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டடி ஹே வோ ஹமே குச் நா குச் நவீனதா கே விச்சார் ரச்சனாத்மக் விச்சார் தேகி குச் நயே விஜுவலைசேஷன்ஸ் தேங்கி ஜிஸ்ஸே ஹம் உஸ்கோ பஹுத் சுந்தர் அனுபவ் பி கரேங்கே என்ஜாய் பி கரேங்கே. மெடிடேஷன் பரமாத்மா சே யே மிலன் கா அனுபவ் ஜித்னா ஜித்னா என்ஜாயபல் ஹோதா ஜாயேகா இஸ்கா சுக் ஆப்கோ மிலேகா. ஆப்கா மன் கீச்சேகா அட்ராக்ட் ஹோகா கி ஹம் தோடா சமய ஹமே மிலா ஹம் யே அனுபூதி கரே ஹம் யே மெடிடேஷன் கா அனுபவ் கரே தோ ஜெய்ஸே ஜெய்ஸே ஹமே யே பிராப்தி ஹோதீ ஜாயேகி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்தே ஜாயேங்கே சக்தி கா சுக் கா பியார் கா சாந்தி கா எக் சாத் கே அனுபவ் கா தோ ஆட்டோமேட்டிக்லி ஹம் நேச்சுரலி சாரா தின் ஹமாரா மன் ஈஸ்வர் கே சாத் ஜுடா ரஹேகா பாத்சீத் கர்த்தா ரஹேகா எங்கேஜ் ரஹேகா ஔர் உஸீ கோ ஹம் ராஜயோகி ஜீவன் கேதே ஹே. யோகி ஜீவன் அர்த்தாத் ஜஹான் சாரா தின் கிசி ந கிசி ரூப் சே ஹமாரா மன் புத்தி கா கனெக்ஷன் ஜோ ஹே வோ ஷிவ் பாபா கே சாத் பரமாத்மா கே சாத் ஹோ. பரிச்சய மில் கயா இஸ்லியே ஹம் ஃபிர் ஷிவ் பாபா பி கேதே ஹே பாபா அக்ஷர் பி கேதே ஹே கியோகி பாபா அக்ஷர் மே வோ மிட்டாஸ் ஹோதி ஹே. அப் ஹம் டெய்லி க்யா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்னா சாஹேங்கே இஸ் யோக் சே தோ ஜரூர் ஹம் சாந்தி கா அனுபவ் கர்னா சாஹேங்கே பியார் கா அனுபவ் கர்னா சாஹேங்கே லேக்கின் விசேஷ ஹம் சப்கோ சக்தி கா அனுபவ் ஜரூர் கர்னா ஹே. க்யூ கர்னா ஹே சக்தி கா அனுபவ் ஆத்மா கோ சசக்த யா சக்திசாலி சமர்த் க்யூ பனானா ஹே க்யூ பனானா ஹே சோல் பாவர் க்யூ ஹமே बढ़ाते जाना है, किस लक्ष्य से, क्यों बढ़ाना है? माया से लड़ने के लिए. अच्छा, क्योंकि जो परिवर्तन हम चाहते हैं अपने आप में लाने के लिए, हमने अब 2-3 दिनों में बहुत सारी बातें समझी है और अंतर में हमने बहुत सारे अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं हम, उसकी भी थोड़ी सी योजना भी बनाई है. नहीं, रफ आइडिया आ गई है, थोड़ा थोड़ा प्लानिंग हमने कर लिया है, हमने कुछ न कुछ अपने लिए योजना बनाई है, रफ आइडिया लिया है, एक्शन प्लान भी अपना बनाया है. लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हम चाहते हैं और जो हम प्रैक्टिकली करेंगे, उसके बीच का जो गैप है वो न रहे, उसके लिए हमें शक्ति चाहिए. जो हम दुनिया में भी देखते हैं कि हमेशा सोच तो हमारी कहीं ना कहीं श्रेष्ठ होती है, अच्छा तो हम सोचना चाहते हैं और सोचते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जब हम कर्म करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं परिस्थितियों को, हम सिचुएशंस को, संबंधों को, तो वहां हम देखते हैं कि थोड़े समय के लिए वो हमारे जो विचार हैं, जिसमें हमने अपने आप को संकल्प दिया है कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, तो ये विचार थोड़े समय के लिए तो चलता है. लेकिन फिर जब परिस्थिति थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, कारोबार में सारा दिन हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, ये संकल्प जो है थोड़ा कमजोर हो जाता है, ढीला हो जाता है. और सिचुएशन अगर डिफिकल्ट आ जाती है तो फिर हम फिर से थोड़ा सा हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, हमारा रिएक्शन हो जाता है. तो कौन सी हमें शक्ति चाहिए जिससे हम ये जो श्रेष्ठ संकल्प हम कर रहे हैं अपने लिए, परिवर्तन के लिए, जो गुण, जो विशेषता हम अपने अंदर धारण करना चाहते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल में भी कर सकें. जो हम दुनिया में भी कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस, माना सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन जब कार्यान्वित करने जाते हैं, प्रैक्टिकल करने जाते हैं, तो डिफिकल्ट होता है, नहीं सस्टेन नहीं कर पाते. उसको हम सस्टेन कर सकें, हमारे ये विचारों को प्रैक्टिकल जीवन में इसका हम आनंद ले सकें, इसकी रिजल्ट देख सकें, इसका बेनिफिट ले सकें, उसके लिए हमें शक्ति चाहिए. तो हम देखते हैं कि शक्ति का दाता कौन, आत्मा की शक्ति का दाता कौन, परमात्मा है. हम उनको सर्वशक्तिवान कहते हैं. तो सर्वशक्तिवान हमारा मात पिता भी है. तो कल भी हमने देखा कि परमात्मा पिता है, इसलिए वो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी देता है. हमने देखा स्थूल चीजें नहीं देता है, नहीं, हमें प्यार से समझाया ना कि स्थूल चीजें नहीं देता, क्योंकि वो हमें, उनके पास वो स्थूल चीजें है भी नहीं, और वो स्थूल चीजें प्राप्त कराने के लिए भी शक्ति देता है, हमें पुरुषार्थ कराता है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि आत्मा को वो समय अनुसार जो आवश्यकता है वो शक्ति हमारे अंदर भरता है. जैसे हम शरीर को शक्तिशाली रखना चाहते हैं, डॉक्टर के रूप में आप पेशेंट्स को भी गाइड करते हैं कैसे वो फिजिकली अपने आप को हेल्दी रखें, पावरफुल रखें, जो उनका प्लान होता है कारोबार उनको जितना करना है, तो शरीर का उसमें सदा साथ उनको मिले, शारीरिक रूप में भी वो सक्षम अपने आप को फील करें. तो जैसे ही शरीर से वो कमजोर फील करते हैं तो वो आपके पास आते हैं, आपसे टॉनिक लेते हैं, दवाई लेते हैं, फिर आप उनको एक्सरसाइज कहते हैं, आप उनको डाइट में भी गाइडेंस देते हैं, बहुत सारी चीजें आप देते हैं, उनको गाइड करते हैं, जिससे वो फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग फील कर सके. और वो फिजिकली स्ट्रांग हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस बढ़ती जा रही है, उसकी निशानी क्या है, उसका प्रतीक क्या होता है, उसकी क्राइटेरियाज क्या होती है, कैसे वो समझते जाते हैं हम फिजिकली फिट हैं. अभी हमारी फिजिकल फिटनेस ठीक होती जा रही है, हमारी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में हम आ रहे हैं, कैसे पता पड़ता है. जो उनकी रूटीन कारोबार है वो भी कर पाते हैं, और कुछ अगर एक्स्ट्रा कारोबार आ गया उनके सामने, उनको थोड़ा जागना पड़ा, कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तो भी उनको शारीरिक रूप में वह शक्तिशाली एक्टिव फील करते हैं, उससे उनको रिजल्ट मिलते हैं कि हाँ अभी हम अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग फील करते हैं। ऐसे ही हम आत्मिक रूप में अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहे हैं, सोल पावर हमारी बढ़ती जा रही है। वो कैसे पता पड़ेगा? जब जो सिचुएशंस हमारे सामने आ रही है उसमें जो आवश्यक शक्ति है वो समय पर हम यूज कर सकेंगे, और उसको यूज करते हुए हमें जो रिजल्ट चाहिए हम वो रिजल्ट अनुभव कर सकेंगे। जैसे हमने सेशंस में देखा, शायद सिचुएशन चेंज नहीं भी हो लेकिन हमारे मन की स्थिति पॉजिटिव हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी, हमारी मन की स्थिति आंतरिक रूप में लाइट हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमें अनुभव करना है मेडिटेशन से? ये शक्तियां हमारे अंदर है, क्योंकि हर एक आत्मा के अंदर जो गुण है, हमने देखा हमारा एक गुण ही है कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, है ना। सात गुणों में एक गुण शक्ति है ना, पावर है ना, इनर पावर, विल पावर। तो शक्ति तो हमारे पास है, और ये जो मुख्य शक्तियां आज हम देखेंगे इनके सिवाय भी बहुत सारी शक्तियां हैं। ये जिसको हम कहेंगे जेनरिक है, कोर हमारी शक्तियां हैं, लेकिन इनके सिवाय भी बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन ये शक्तियां अक्यूमुलेट होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, हर समय पर हम इस शक्ति को यूज कर सकेंगे, हर परिस्थिति में, हर समय पर, हर एक संबंध में। आज क्या है, शक्ति है लेकिन कभी हम यूज कर पाते हैं, कभी नहीं यूज कर पाते हैं। कहाँ कहाँ वो शक्ति इमर्ज हो जाती है लेकिन कहाँ चाहते हुए भी नहीं यूज कर पाते हैं। अब ये शक्ति का हमारा अनुभव जो है, जितना हमारा मेडिटेशन का अभ्यास बढ़ता जाएगा, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आत्मा अंदर से सशक्त भी होती जाएगी, और जो आत्मा की कमजोरियां हैं, जो हमारी लिमिटेशंस है, जिसके वजह से आत्मा की सोल पावर नीचे आ जाती है, हमने देख लिया ना, लेफ्ट हैंड में हमने वो इमोशंस को देख लिया ना, हमने ये भी देखा कि उसका स्रोत ये विकार, जो कमजोरियां हैं, आत्मा की कमजोरियां, जिसको हमने शब्द माया कहा, यहां कई बार हम वो शब्द रावण भी कहते हैं, कमजोरियां है ना। रावण को भी 10 शेष दिखाते हैं, तो 5 विकार परमात्मा हमें समझाते हैं कि 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। तो ये जो विकार है, इसके आधार से जब हम ये नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस क्रिएट करते हैं, तब फिर नेगेटिव कर्म भी क्रिएट होते हैं। तो राजयोग के अभ्यास से धीरे धीरे ये कमजोरियां जो है वो भी परिवर्तन होती जाती है, उनका जो प्रभाव है, उनका जो होल्ड है हमारे ऊपर, हमारे मन और बुद्धि पर जो उनका प्रभाव है, वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, ढीला होता जाता है। वो विकार का जो एक्सप्रेशन है वो धीरे धीरे व्यवहार में, बोल में कम होता जाता है, और फिर धीरे धीरे संकल्पों में भी चेंज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जितनी एकाग्रता होती है उतनी हमारे अंदर की शक्तियां भी बढ़ती जाती हैं। वैसे भी कहा गया है कि जहां हम ध्यान केंद्रित करते हैं वहां ये ऊर्जा का संचार होता है। तो बार बार हम यहाँ राजयोग के अभ्यास में किसकी स्मृति में लाते हैं अपने आप को? आत्मा के ओरिजिनल वर्च्यूज और पावर्स, बार बार वो गुणों को हम स्मृति में लाते जाते हैं, और जैसे वो गुणों को हम अपने अंदर स्मृति में लाते जाते हैं और परमात्मा के साथ भी उन गुण और शक्तियों को अपने अंदर भरते जाते हैं, तो वो शक्तियां हमारे जीवन में नेचुरल होती जाती हैं। अब उनमें से कुछ अष्ट शक्तियां परमात्मा हमें समझाते हैं कि अष्ट शक्तियां जो है कैसे हमारे अंदर हम भरते जाएं और प्रैक्टिकल सिचुएशंस में यूज करें। तो ये पहली शक्ति सहन शक्ति, सहन शक्ति, और उसके साथ साथ जो आगे शक्ति हम देखेंगे समाने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां हमें संबंधों को ठीक रखने के लिए, मधुर रखने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए मदद करती हैं। तो हमने अपना बहुत सुंदर सेशन भी रिलेशनशिप्स पर किया, हमने देखा ना कि कैसे संबंधों में सामने से अगर वो ब्लैक बॉल आ भी रहा है, लेकिन हमें क्या देना है, हमें कौन सा बॉल फेंकना है, हमें कौन से संकल्प करने हैं, हमें कौन से बोल बोलने हैं। तो हमने ये समझ लिया, लेकिन उसके लिए शक्ति चाहिए। तो परमात्मा जो है हमारे अंदर ये सहन शक्ति भरते जाते हैं। अब सहन शक्ति, सहन करना, ये शक्ति है या कई बार हम साधारण रूप में दुनिया में समझते हैं कि जो सहन करते हैं माना वो कमजोर है, कमजोर है ना, समझते कि ये तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, ये तो शांत रहते हैं, ये तो कुछ बोल नहीं सकते, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनसे ही ये गलती हुई है। तो आज के समय में कभी कभी सहन करने को कमजोरी के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन वास्तव में सहन करना एक शक्ति है। क्योंकि क्रोध करना, आवेश में आना, एग्रेसिव हो जाना, अपसेट हो जाना, रिएक्ट करना सहज है, सहज है ना। उसके लिए कोई ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए कोई मेडिटेशन चाहिए, बहुत इजी। छोटा बच्चा भी आप देखिए, आप उसको शॉपिंग के लिए मॉल में ले जाओ, नहीं आप शॉपिंग कर रहे हैं, उसको आपने मॉल में ले गए, वहां प्ले स्टेशन होता है, बच्चा खेलता जाता है, लेकिन अगर वो उसने उसका ध्यान कोई टॉय शॉप पे चला गया और उसको वो कोई खिलौना चाहिए, तो आप कितना भी उसको कन्विंस करने की कोशिश करें कि अभी नहीं लेंगे, आपके पास ये टॉय है, तो भी बच्चा क्या करता है, इंसिस्ट करता है ना? उसको अगर आप नई खिलौना दिला रहे हैं या उसकी जो भी इच्छा है, जो उसको खाना है पीना है वो नहीं दिलाएंगे, तो क्या होता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा भी आजकल हम देखते हैं बहुत गुस्से हो जाता है, रिएक्ट करता है, करता है ना, छोटा सा बच्चा। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के लिए भी गुस्सा करना, रिएक्ट करना बड़ी बात नहीं, उसको किसने सिखाया। तो हम देखते हैं कि ये कमजोरियों के वश जो रिएक्शन हम करते हैं वो तो वास्तव में सहज है। सहन करना, शांत रहना, धीरज रखना, उस समय अपने आप में सोचना, अपने आप में चिंतन करना कि इसी परिस्थिति को मैं किस रूप से रिस्पॉन्ड कर सकता हूं, कर सकती हूं, इसके लिए शक्ति चाहिए, इसके लिए हमें समझ चाहिए, इसके लिए हमें मेडिटेशन से अपने आप को पावरफुल बनाना है। तो रिएक्ट करने के लिए तो कोई ना कोई शक्ति चाहिए, ना उसके लिए कोई आयु का बहुत विकास चाहिए, ना उसके लिए कोई डिग्री चाहिए, कोई भी रिएक्ट कर सकता है। तो सहन शक्ति अर्थात समय अनुसार, परिस्थिति के अनुसार सही प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्ड करना। तो विशेष सहन करना तो संबंधों में ही आता है, संबंधों में ही आता है ना। हमने देखा कैसे संबंध जो है, हर एक के अपने विचार हैं, हर एक के अपने संस्कार हैं, तो वो भिन्न भिन्न संस्कार वाली हर एक आत्मा हम संबंध में आती, हमने देखा ना कैसे हर एक आत्मा एक जर्नी से आ रही है, तो अलग अलग जर्नीज में उसने अलग अलग कर्म किए हैं, तो उसके संस्कार भिन्न भिन्न है। हम सबके संस्कार जो है अलग अलग हैं, लेकिन उस संस्कार में संस्कार मिलन करना, अपने आप को उस सामने वाले व्यक्ति का, उनकी विशेषता को देखना, उसके पास कमजोरी जरूर है लेकिन उसकी विशेषता को देखकर उनके साथ कनेक्ट करना, उनके साथ तालमेल करना, उनके साथ वो संस्कारों की रास करना, उसको सहन शक्ति कहा जाता है। तो अगर हम देखते हैं कि हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और रिएक्ट करते हैं, हमने अपसेट हो गए, हम रिएक्ट कर लिया, हमने कुछ गुस्से में बोल दिया, तो क्या हो जाता है संबंध में, जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, विशेष परिवार में जिनके साथ हम रहते हैं, चाहे जीवन साथी हैं, बच्चे हैं, वहां रिएक्शन होता है, होता है, होता है। तो वहां जैसे ही हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो संबंध कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति हमसे थोड़ा नाराज हो जाता है, अपसेट हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती, होती है ना, होती है ना, जीवन साथी के साथ भी होती है ना। फिर हम कारोबार होगा तो हम क्या कहेंगे, बच्चे को कहेंगे कि अपने मम्मी को कह दो भोजन का टाइम हो गया है, नहीं? तो इसलिए हम देखते हैं फिर बातचीत तो नहीं हम करते हैं, मन से हमारी बातचीत ज्यादा होती है, मुख से नहीं होती, लेकिन वाइब्रेशंस की लेन देन हो रही है। तो हम देखते हैं कि जैसे वो संबंध में मन मुटाव हो जाता है, रिएक्शन की वजह से संबंध में बातचीत बंद हो जाती है, तो हम जितना समय भी उस रिएक्शन मोड में रहें, हमें फिर से रिस्पॉन्स मोड में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। चॉइस है हमारे पास? चॉइस है नहीं, क्योंकि वो संबंध इतने समीप है कि फिर से हमें आपस में एक दूसरे के साथ उस संबंध की मिठास को, संबंध की समीपता को लाना ही जरूरी होगा। नहीं, बच्चे के साथ है, जीवन साथी के साथ है, आप हॉस्पिटल में है तो जिनके साथ आप कारोबार करते हैं, टीम है आपका, आपके कोई सीनियर्स हैं हॉस्पिटल में, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मैनेजमेंट टीम है, नहीं, बातचीत कारोबार तो सारा दिन होता ही रहता है ना, तो वहां भी हमें जितना भी समय हम रिएक्शन मोड में रहें, हमें रिस्पॉन्स मोड में तो आना ही होगा। लेकिन जितना ज्यादा समय रिएक्शन मोड में रहेंगे उतना क्या होगा, उतना क्या होगा, आत्मा की शक्ति जो है कमजोर हो जाएगी और उतना ज्यादा समय लगेगा उस संबंध को ठीक करने के लिए। तो समय भी हमारा ज्यादा चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, आत्मा की शक्ति भी नीचे आ जाएगी और वो संबंध में समीपता भी थोड़ा और समय लगता है आने में। तो इसलिए हम देखते हैं कि सहन करना ये बहुत आवश्यक होता गया है। उस समय हम सामने वाले व्यक्ति के साथ रिएक्ट न करके शांत रहें। तो शांत रहना माना, सहन करना माना अपने मन के विचारों का दमन नहीं करना, परिवर्तन करना। हमने सीखा कि कौन से विचार उस समय हमें निर्माण करने, हमें शिवानी बहन ने कितना अच्छी तरह से हमें वो कोडिंग कराई ना, विचार दिए ना हमें, तो कैसे हमें उस समय उन विचारों का निर्माण करना। तो आज तक जो हमें सहन करना डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सहन नहीं करते, हम क्या करते हैं उस समय, अपने अंदर में जो गुस्सा आ रहा है, जो फीलिंग्स आ रही है, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, उसको थोड़ा सप्रेस कर लेते हैं। जैसे हम अगर हॉस्पिटल में हैं, पेशेंट है हमारे सामने, वो बार बार वही चीज रिपीट कर रहा है, अब हम पेशेंट के साथ तो रिएक्ट नहीं कर सकते ना, हमें कारोबार उनके साथ करना ही है, हमने आगे उनके साथ डील करना ही है, एडमिट हो गए हैं पेशेंट, उनके रिलेटिव्स के साथ हम डील कर रहे हैं, तो वहां अगर हम बार बार रिएक्ट करते हैं तो फिर संबंध ठीक नहीं होता, फीडबैक अच्छा नहीं मिलता है। तो वहां हम थोड़े समय के लिए मन को, अंदर में जो गुस्सा आ रहा है उसको क्या करते हैं, अंदर में सहन करते हैं कि चलो अभी मुझे कुछ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। लेकिन हम फील करते हैं कि तीन बार हमने नहीं बोला, चार बार हम शांत रहे, पांच बार हम शांत रहे, लेकिन छठी बार जब वो व्यक्ति फिर से कोई ऐसी बात करता है तो क्या होता है, क्या होता है, फिर हम रिएक्ट कर लेते हैं। तो जब हमने सिक्स टाइम रिएक्ट किया तो वो पांच बार जो हमने अपने फीलिंग्स को थोड़ा सा सप्रेस किया, दबाया, वो सब क्या हो जाते हैं, सिक्स टाइम क्या हो जाते हैं, वो सारे फीलिंग्स अंदर आ जाते। तो माना हमने वास्तव में सहन नहीं किया, क्या किया, क्या किया, सप्रेस किया, दमन किया, और सप्रेस करने की लिमिटेशन है। दूसरा, सप्रेस करना अनहेल्दी है, नहीं, क्योंकि आप डॉक्टर्स हमें समझाते हैं ना कि कैसे सभी बीमारियां हमारी साइकोसोमेटिक है, तो हम जानते हैं, जैसे हमने देखा हमारे विचारों का प्रभाव तुरंत हमारे शरीर पर पड़ रहा है, तो जो भी वो नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस है वो क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है उसका, हमारे स्वास्थ्य पर उसका असर हो रहा है और वाइब्रेशंस भी पहुंच रहे हैं। हमने ये भी देखा रिलेशनशिप्स में कि हमारे वाइब्रेशंस जो है वो तो सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंच ही रहे। तो इसलिए सप्रेस करना, दमन करना, ये राइट मेथड नहीं है, ये ऑप्शन राइट नहीं है, ये टेम्पररी है। लेकिन परमात्मा हमें सिखाता है कि कैसे समय पर उस परिस्थिति में हम अपने विचारों को परिवर्तन कर लें, हम सहन करें अर्थात विचारों को परिवर्तन करें, उसी परिस्थिति को हम नए दृष्टिकोण से देखें, एक आध्यात्मिक समझ के दृष्टिकोण से देखें। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही कर लें, आप सभी यहाँ चेयर्स पर बैठे, ये चेयर्स हमारी सारी फिक्स चेयर्स हैं जहाँ बैठे हैं। अब सपोज आप चेयर पर बैठे हैं, क्लिनिक में हैं या घर में हैं, और वो चेयर मूवेबल है, आपने वो चेयर को होल्ड कर लिया, ठीक है। अभी ये चेयर को भी आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए समझ लीजिए कि ये भी मूवेबल है, होल्ड कर लीजिए। जो सोफा है उसको भी आप होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कर लीजिए टाइटली। आप सोचिए आपका सब कुछ जो भी आपके पास है, आपकी अचीवमेंट्स है, आपके पास प्रॉपर्टी है, धन है, जो कुछ है आपके पास, वो सब इस चेयर में है। तो टाइटली इसको होल्ड कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए। अच्छा, अब मैं अगर आपको कहूं कि आप इस चेयर को लेफ्ट में 10 इंचेस मूव कीजिए या राइट में 10 इंचेस मूव कीजिए, पॉसिबल है? अगर ये मूवेबल चेयर हो तो पॉसिबल है? पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, लेकिन अगर करने जाएंगे तो क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, नहीं अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसे खींच खींच के हम ये बाजू ले जाएं, खींच खींच के वहां ले जाएं, तो डिस्कम्फर्ट होगा, होगा ना डिस्कम्फर्ट। आगे भी अगर हम उसको पकड़ते हुए खींचने की कोशिश करें तो डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं। क्यों डिफिकल्ट है? ऐसे अगर हम रिलीज कर लें अपने होल्ड को, तो हम रिलीज करके अगर देखें तो वो चेयर और हम दोनों में से पावरफुल कौन है? हम, क्योंकि हम इसके क्रिएटर है ना। लेकिन जब हमने इसको होल्ड कर लिया तो कौन पावरफुल बन गया? कौन पावरफुल बन गया? कौन डिसाइड कर रहा था हमारे मूवमेंट्स को? कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा था मूवमेंट्स को? चेयर। तो जब भी हमने कोई सिचुएशन को अपने नेगेटिव फीलिंग्स, फियर से, एंजाइटी से, वरी से, नेगेटिव फीलिंग से होल्ड कर लिया, क्यों किया इसने ऐसे, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये होगा आगे कैसे होगा, तो जब भी कोई भी नेगेटिव फीलिंग, जो भी हमने वो लेफ्ट साइड पर देखा, वो सारे फीलिंग्स के आधार हमने उस सिचुएशन को या उस रिलेशनशिप को होल्ड कर लिया, तो क्या हो जाता है? किसके पास पावर हमने दे दी? किसको पावर दे दी? उस सिचुएशन को या उस व्यक्ति के उस संस्कार को, उसके नेगेटिव बिहेवियर को। तो वो चीज हमें प्रभावित करती है। तो सहन करना अर्थात हम अपने स्टेट ऑफ माइंड को पावरफुल रखते हुए हम उस सिचुएशन को, उस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करना शुरू करें। वो कैसे होगा? हमने चेयर को कैसे इन्फ्लुएंस किया? जब हम रिलीज कर लिया होल्ड, तो अगर मूवेबल चेयर्स हैं तो हम कितने भी चेयर्स को हम सेट कर सकते हैं। जिस भी आपको मैं गाइड करूं तो आप सेट करके मुझे सहयोग देंगे, हम मूव कर सकते हैं। ऐसे ही हम हर रिलेशनशिप को जब हम डिटैच होकर देखते हैं, जो यहाँ परमात्मा ने हमें समझ दी है कि हर एक व्यक्ति एक बहुत सुंदर आत्मा है, तो मस्तक के मध्य में वहां भी अगर उसको आत्मा के रूप में देखते हैं, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाने की, तो धीरे धीरे हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे कि हमारे फैमिली जो है उसमें हर एक व्यक्ति को हम ये मस्तक के मध्य में वो सुंदर सितारे को देखेंगे, वो सुंदर लाइट को देखेंगे कि वो भी कौन है? शांत स्वरूप आत्मा है। किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। आत्मिक रूप में कौन सा संबंध है? समीप परिवार का संबंध है। तो ऑटोमेटिकली फिर उनके अंदर हम वो विशेषता को देख सकेंगे, उनके लिए हमारी भावनाएं जो है वो शुभ होती जाएंगी, और फिर हम समझ जाएंगे जब वो रिएक्ट कर रहे हैं कि उनकी मनोस्थिति इस समय क्या है, थोड़ा तनाव के प्रभाव में है। हमारा भी अपना अनुभव है कि हम जैसे ही अपसेट होते हैं तो अंदर में हम बहुत वीक फील करते हैं। मुझे याद है बहुत समय पहले हम एक प्रोग्राम कर रहे थे एक स्कूल में, और मेरे साथ एक बहुत अच्छी फैकल्टी चली थी जो बहुत अच्छे वो एक्ट भी कर सकते थे, बहुत अच्छे एक्टर भी थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट के रूप में बच्चों को के सामने रखा, और उन्होंने एक एंग्री पर्सन, गुस्से में जो व्यक्ति है, उसको माइम किया, उसको एक्ट करके दिखाया स्लो मोशन में। नहीं, कई बार हम टीवी में, फिल्म में देखते स्लो मोशन में देखते, तो आप अपने चेहरे को ही देखें गुस्से में, देख सकते हैं ना, मन की आंखों से देखें वो सिचुएशन में जब आप बहुत अपसेट हैं, हुआ है मे बी लास्ट वीक में, यहां आने के बाद तो नहीं हुआ है, यहां आने के बाद तो नहीं हुआ ना, नहीं, लेकिन इसके पहले कोई भी सिचुएशन में अपने आप को या और किसी व्यक्ति को अगर नहीं अपने आप को देखना चाहे तो किसी को देखें, और फिर स्लो मोशन में उस व्यक्ति की फिजिकल एक्सप्रेशन को भी देखें स्लो मोशन में। तो जब हम स्लो मोशन में किसी को देखते हैं क्रोधित, तो उनके आंखों में कौन सा इमोशन दिखाई देता है, कौन सी फीलिंग दिखाई देती है? खुशी की, शक्ति की, स्थिरता की, या दर्द की, रेस्टलेसनेस की, अशांति की, कमजोरी की, क्या दिखाई देता है? अशांति दिखाई देती है, दर्द दिखाई देता है। तो बाह्य रूप से तो हम उनका गुस्सा देख रहे हैं, बहुत एग्रेसिव है, लेकिन मन की स्थिति अगर चेक करें उस समय तो क्या है, शक्तिशाली है कमजोर है? कमजोर है। हमारे भी मन की स्थिति जब हम क्रोध करते हैं तो कमजोर, हेल्पलेस है, हम अपने मन को उस समय ठीक नहीं रख पा रहे, इसलिए बाह्य रूप से फिर रिएक्ट कर रहे हैं। तो मन की स्थिति को देखेंगे तो उनके प्रति भी हमें शुभ भावना महसूस होगी। तो टॉलरेंस पावर अर्थात ये परिवर्तन शक्ति, जहां हम उनको आत्मिक रूप में देखते हैं, जहां हम उस परिस्थिति में हमें क्या रिस्पॉन्स देना है उस पर हम फोकस करते हैं। जैसे हमने देखा ना कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो तो पास्ट कर्म की वजह से है, लेकिन पावर किस में है? पावर किस में है? जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, तो हम चूज करते हैं कि हम उस संबंध में शांति रखेंगे, धीरज रखेंगे, उनके प्रति शुभ भावना रखते हैं। तो उसके लिए ये दूसरी शक्ति हमें मदद करती। सहन शक्ति को हमने किस रूप में देखा, प्रकृति के में कौन सा एग्जाम्पल देख रहे हैं यहां, वृक्ष का, वृक्ष देखा, ट्री, तो ट्री को सहन शक्ति का प्रतीक क्यों बताया है, क्या रहस्य है, क्यों दिखाया है वृक्ष को? ट्री क्यों सहन शक्ति का प्रतीक है जी? Keeps on giving, सही बात है, सहन करना माना देते रहना, अच्छी बातें देते रहना, और doesn't react, अच्छा हमने पत्थर मारा, जैसे छोटे बच्चे वहां बच्चे को देख रहे हैं, पत्थर मारा, लेकिन वृक्ष क्या करता है, फल देता है। तो प्रकृति की भी सभी परिस्थितियों को, धूप है, बरसात है, आंधी तूफान है, सब सहन करते हुए छाया देता है, देता रहता है। और वृक्ष को पता है कि जितने उसके पास फल हैं उतने पत्थर सहन करने पड़ेंगे, जितनी विशेषताएं हैं, जितना आगे आपको जीवन में बढ़ना है, जितना आपको सत्यु की आत्मा बनना है, तो क्या करना होगा, कुछ बातें तो हमारे सामने टेस्ट तो आएगी ही, तो इसलिए सहन शक्ति के साथ ये समाने की शक्ति बहुत आवश्यक है। तो परमात्मा हमें ये शक्ति से भी भरपूर करता है। तो यहां हम देखते हैं सागर का मिसाल है, नहीं, जैसे परमात्मा को भी हम स्नेह का सागर कहते हैं, क्षमा का सागर कहते हैं, तो सागर से कौन सी विशेषता हम सीखते हैं, सागर समाने की शक्ति का प्रतीक कैसे है, क्या विशेषता है? जो कुछ भी हम सागर में डालते हैं सागर क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, लेकिन वो सिर्फ स्वीकार नहीं करता है, सागर बहुत समझदार है, वेरी वाइज, वो क्या करता है, ले तो लेता है लेकिन उसके बाद क्या करता है, क्या करता है, हाँ, जो चीजें उसको समाने योग्य नहीं लगती है, उसके लिए आवश्यक नहीं है, उसको ये समाना नहीं है, वो क्या करता है, किनारे पर फेंक देता है। तो समाने की शक्ति अर्थात जिसको हमने कहा दरिया के समान, सागर के समान हृदय हो, बड़ी दिल हो, जहां हम हरेक की कमजोरी जो है देखते हुए भी उसको समा ले, उसके बारे में चिंतन न करें, उसको क्षमा कर ले। अब क्षमा करने से फायदा किसको होगा, हमने देखा क्षमा करने से फायदा किसको होगा, मुझे, हमारे अंदर में यहाँ वो नेगेटिव फीलिंग्स, वो नेगेटिव इमोशंस, जो दर्द है उसको हम फ्री कर देंगे, वो हम क्रिएट नहीं करेंगे. अगर क्रिएट किया है तो उसको हम रिलीज कर देंगे, उसको हम परिवर्तन करेंगे, अपने मन को बहुत लाइट, रिलैक्स्ड, इजी बना देंगे. तो इसलिए क्षमा करना अर्थात बड़ी दिल रखना, उनकी कमजोरियों को देखते हुए भी उनकी विशेषताओं को देखना. वैसे भी अगर आपके सामने कोई एक प्लेट रख लेता है और उसमें बहुत सुंदर सुंदर पत्थर हैं, बट हर एक पत्थर जो है बहुत सुंदर रंगों से रूप में कलर्ड है, नहीं, कलर्ड स्टोन्स होते हैं, तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपको कहा गया है कि इस प्लेट के अंदर, इस ट्रे के अंदर एक हीरा है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्यों ढूंढना किसको शुरू करेंगे? हीरे को. क्यों? इतने सुंदर पत्थर है, उनको आप क्यों नहीं एंजॉय करेंगे? हीरे को क्यों ढूंढेंगे? जी, वैल्यूएबल वो है. ऐसे हर एक के अंदर कोई ना कोई कमजोरी तो है, हमारे अंदर भी है ना, हम सबके अंदर भी है ना. हमने चेकिंग की ना, ये 2-3 दिनों में चेकिंग हुई, हमने देखा ना जो लेफ्ट में इमोशंस है वो कितना समय हम यूज कर रहे हैं, कितना परसेंटेज में यूज कर रहे हैं. चेकिंग की किया ना हमने, चेकिंग तो हमने भी रियलाइज किया, हम सब में, हम रोज चेक करते हैं, चार्ट लिखते हैं, परमात्मा बहुत प्यार से हमारी चेकिंग कराते हैं. जो डेली स्पिरिचुअल स्टडी है उसमें आपकी चेकिंग परमात्मा कराएंगे, तो उसमें रियलाइज भी हम करते हैं कि ये कमजोरी हमारे अंदर है, और उसको फिर हम परमात्मा की याद से, इस ज्ञान को समझते हुए अपने अंदर वो परिवर्तन लाते हैं. तो हर एक के अंदर कमजोरी है, हमारे अंदर भी है, हम भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो आत्मा भी समय अनुसार अपने ऊपर काम कर रहेगी, कर रही है या आगे भी करेगी. तो उनके प्रति भी शुभ भावना. तो दरिया दिल अर्थात बड़ी दिल अर्थात क्षमा किया, हमने विशेषता को देखा, हमने जो चीज हमारे लिए वैल्यूएबल है वो स्वीकार की, हमने हीरे को देखा, साइड कर लिया ना पत्थरों को, क्या देखा? हीरे को. हमने उनकी विशेषता को देखा, उसको अपने कार्य में, अपने संबंध में यूज किया. जैसे हमने सामने वाले व्यक्ति की विशेषता को देखा, उसके बारे में विचार किया, संकल्प किया, हमारे संकल्पों का कम्युनिकेशन भी पहुंच गया, और फिर अगर हमने वर्णन किया कि आपके अंदर ये विशेषता है, तो सामने वाले व्यक्ति क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपका टीम है जिनके साथ आप काम करते हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, उनको आपने उनकी विशेषता के बारे में सुनाया, उनको अप्रिशिएट किया, क्या करेंगे वो? क्या करेंगे वो? उस विशेषता को और यूज करने का लक्ष्य रखेंगे और उसको अपने कारोबार में प्रयोग करेंगे. वो समझेंगे कि आपने उनमें वो विशेषता देखी है तो आपके साथ तो वो विशेषता 100% यूज करेंगे, क्योंकि आपका उनमें वो ट्रस्ट है, वो विश्वास है. नहीं तो हम देखते हैं जैसे छोटे बच्चे भी हैं, वो कुछ छोटे बच्चे कुछ ड्रॉ करके आते हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बना के आते हैं, तो आप अगर वो ड्राइंग को अप्रिशिएट करते हैं तो क्या करते हैं बच्चे? खुश हो जाते हैं, फिर जाकर और एक ड्राइंग आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि बच्चे को आपका जो प्यार है, अप्रिसिएशन जो है, वो मोटिवेट करता है. इसी रूप से उनकी विशेषता को देखना और उनको बहुत प्यार से क्षमा करना, क्योंकि क्षमा करना अर्थात हमारे अंदर में हम कोई भी नेगेटिव फीलिंग को नहीं रख रहे हैं, अपने आप को हम लाइट और रिलैक्स कर रहे हैं. तो हम देखते हैं सहन शक्ति और समाने की शक्ति से संबंधों को हम बहुत शक्तिशाली बनाते जाते हैं. फिर ये दो शक्तियां परमात्मा हमें देते हैं जो हमें कारोबार में बहुत यूजफुल होती. जो भी कारोबार है, विशेष आप तो ट्रीटमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, फिर आप में से कई सर्जन्स हैं, सर्जरी करते हैं, तो उस समय पर जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है, सर्जरी में कई बार कॉम्प्लिकेशन आते हैं, आपने प्लान किया हुआ है लेकिन शायद वो पेशेंट का पैरामीटर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, होता है, होता है कभी? हाँ. उस समय राइट डिसीजन लेना जरूरी होता है, जरूरी होता है. तो वो परख शक्ति और निर्णय शक्ति कि इस समय पर हमें क्या करना है, ये क्यों पैरामीटर ऊपर नीचे हुआ, किस कारण से हुआ, और इस समय मुझे क्या करना है, कभी ब्लीडिंग हो गया, कभी जो कुछ भी पैरामीटर ऊपर नीचे हुआ उसको कंट्रोल करना है, और कैसे मुझे आगे ये सर्जरी को कंप्लीट करना है। कोई पेशेंट का डायग्नोसिस है तो आपने दवाई दी लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिल रही है, तो फिर आप परखते हैं कि ये दवाई इनको क्यों नहीं सूट हो रही है, या इनका कौन सा और पैरामीटर ऊपर नीचे है, सच रियल प्रॉब्लम क्या है। तो परख कर फिर हम निर्णय लेते हैं। तो परखने की शक्ति, अर्थात जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल में जौहरी दिखाया है, तो जौहरी के पास क्या है, समझ भी है, उस हीरे जवाहरात की नॉलेज है, उसके पास उसकी समझ है और एकाग्रता है। तो हमें परखना किसको है, आपके कारोबार में तो आपको परखना है, लेकिन उसके साथ साथ हर एक आत्मा को परखना, उसकी विशेषता को समझना, जानना, उसकी कमजोरी को भी समझना, ताकि जब उनके साथ हम संबंध में आते हैं तो हम उनकी कमजोरियों को ट्रिगर नहीं करें। तो उनकी कमजोरियों को भी समझना, उनकी लिमिटेशंस को समझना, हर एक आत्मा को परखना, हर एक सिचुएशन को परखना, हर एक पेशेंट को परखना कि इस समय उसको कैसे हमें ट्रीट करना है, हर सिचुएशन, हर एक की सिचुएशंस अलग अलग, समय को परखना। आप जो कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो राइट है, लेकिन समय राइट नहीं। बच्चा है, आपने उसको शिक्षा दी, आपने उसको करेक्ट किया, जो जरूरी है, लेकिन आपने उसको करेक्ट किया कब, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, जब वो एक ग्रुप में है, तो वहां आपने उसको करेक्ट कर लिया, तो बच्चा उसको स्वीकार नहीं कर पाता है, उसको फील हो जाता है, वो लो फील करता है। तो करेक्शन जो है वो राइट है, लेकिन समय पर, राइट समय पर करना। तो परखना, तो जैसे जैसे हमारा मन जो है परमात्मा की याद में रहता है, मन मना भाव जिसको परमात्मा हमें गीता के शब्द हैं उसको हमें समझाते हैं, मन को मेरे में लगाओ, तो हमारी डेली स्पिरिचुअल स्टडी में परमात्मा हमें समझाते हैं कि जैसे जैसे हमारा मन उस ईश्वर के साथ जुड़ा होगा, मन मना भाव होगा, तो हम हरेक के मन के भाव को परख सकेंगे, हरेक की मनोस्थिति को भी समझते जा सकेंगे। और हम देखते हैं कि मेडिसिन में भी ये हमें बहुत मदद करता है, बहुत सारी थेरेपीज है, होम्योपैथी है, इसमें तो मन के भाव के आधार से मेडिसिन देते हैं, तो हम देखते हैं कि ये बहुत मदद करेगा। हम सामने वाले व्यक्ति के मन के भाव को जानते हैं, हम परिस्थिति को भी समझते हैं, तो फिर हम राइट निर्णय ले सकेंगे। और फिर हम जब निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने की शक्ति, पावर टू जज, राइट डिसीशन लेना, और उस डिसीशन के आधार से फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो भी बहुत जरूरी है, निर्णय लेना, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन उस समय सही निर्णय लेना। तो आज के समय में कहा जाता है हमारी बुद्धि जितनी इंट्यूटिव है उतना हम सही निर्णय ले सकते हैं। पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इंट्यूशन माना डायरेक्ट एक्सेस टू ट्रुथ विदाउट द सपोर्ट ऑफ फैक्ट्स, अर्थात परमात्मा की टचिंग, ईश्वर की प्रेरणा, अंतर प्रेरणा, जिसको आप गट फीलिंग भी कहते हैं। कहते हैं कई बार आप जब डायग्नोसिस करते हैं, सर्जरीज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तब जो रूटीन है, जो आपका नॉर्मल रूप से हर एक डॉक्टर ट्रीट करता है, आपको लगता नहीं ये पेशेंट में वो प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसे करने से फायदा होगा, और आप वो डिसीजन ले लेते हैं और उससे फायदा हो जाता है पेशेंट को, होता है ना। तो उस समय सही निर्णय लेना, भल आपकी जो पढ़ाई है वो आपको कुछ और कह रही है, शायद उस समय के जो भी समझ है उस बीमारी के बारे में वो बहुत सारी और बातें कर रही है, लेकिन आपको लगता नहीं इस केस में ये चीज मदद करेगी, होता है ऐसा, अनुभव है आपको ऐसे, उस समय इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। तो हमारी बुद्धि जितना समय उस बुद्धिवानों की बुद्धि के साथ जुड़ी रहेगी, वो हायर विजडम हमें गाइड करेगा, हमें सही निर्णय लेने में मददगार रहेगा। जितना हम रोज परमात्मा के उस महावाक्यों को समझेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, हमें सारे दिन के लिए वो राइट डिसीशंस लेने के लिए मदद करेगा। जितना जितना हम इस ज्ञान को यूज करेंगे समय पर, उतना सही निर्णय हमारे होंगे। और हमने देखा कि यह निर्णय हमें कहां से करना है, संकल्पों से ही निर्णय लेना है, क्योंकि संकल्प ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कर्म है। तो इसलिए ये निर्णय लेना, हमने निर्णय लिए हैं, कई यहां बैठकर भी अपने जीवन के लिए निर्णय लिए, राइट निर्णय लेना। और उन निर्णय के आधार पर जो कर्म हम करते हैं, फिर वो कर्म हमारे सामने आते हैं तो उसका सामना करना। अब जो निर्णय लेने के लिए भी सिंबल जो है न्याय की देवी, नहीं तो उनको कैसे दिखाया है, आंखों पर पट्टी और हाथ में तराजू। आंखों पर पट्टी क्यों, क्यों न्याय की देवी है, जस्टिस करने के लिए हम समझते हैं कि राइट निर्णय लिया जाए जो जस्ट हो सबके लिए, तो आंखों पर पट्टी क्यों, जो दिख रहा है उसको नहीं देखना, नहीं तो फिर क्या देखना। हम सबको सही निर्णय लेना है, आपको तो सर्जरी में आपके ट्रीटमेंट में सही निर्णय लेना है, तो फिर आंखें बंद करके तो कैसे कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये आंखें बंद करना ये एक सिंबॉलिक है कि स्थूल नेत्रों से सिर्फ नहीं देखना, क्योंकि स्थूल नेत्र किसको देखेंगे, फिजिकल आइज किसको देखेंगे, किस व्यक्तित्व को देखेगी, सिर्फ बाहर से, सिर्फ एक्सटर्नल व्यक्तित्व को, सिर्फ शरीर को देखेगी, जो बाह्य व्यक्तित्व है उसी को देखेगी। लेकिन आंखें बंद मना इन आंखों से नहीं देखना सिर्फ, लेकिन ज्ञान के नेत्र से देखना, जिसको थर्ड आई हम कहते हैं। तो बुद्धि के पास जैसे ये ज्ञान की समझ आती जाती है और उसके आधार से, उस पर्सपेक्टिव से जब आप सिचुएशन को देखते हैं, अब आपका सिचुएशन को देखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, यहां से जाने के बाद डिफरेंट होगा, सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है लेकिन आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, तो वो है ज्ञान का तीसरा नेत्र। सिचुएशन जो है क्राइसिस का होगा लेकिन आपका उस सिचुएशन को देखना अब ये होगा कि ये परिस्थिति आई है, मुझे इसमें समाधान करना है। तो इसलिए ये नए पर्सपेक्टिव से देखना, ज्ञान के दृष्टिकोण से देखना, तो ये थर्ड आय। तो बुद्धि रूपी चक्षु से, जिस बुद्धि में अभी ये ज्ञान की समझ है उससे देखना। और फिर स्केल क्यों है, स्केल में क्या होता है, कांटा जो है हाथ से जब हम पकड़ते हैं तो फिर स्थिरता बैलेंस आता है। तो सारा दिन बुद्धि हमारी उस एक को याद करती रहे, बीच बीच में उस एक को हम याद करें। चलो सारा दिन कारोबार में हम बिजी हो जाते हैं, आपके तो एक्टिविटीज कर्म जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें बुद्धि बहुत इन्वॉल्व होना जरूरी भी है, लेकिन बीच बीच में समय निकालकर फिर से हम कनेक्ट करें तो वो बैलेंस हमारे लाइफ में आता जाएगा, जहां हमारी भावनाएं और विवेक का संतुलन है। भावना के वश निर्णय लिया तो भी कई बार गलत होगा, और सिर्फ बुद्धि के आधार से निर्णय लिया तो भी गलत होगा, दोनों का बैलेंस। पेशेंट के भी हमें उसके प्रति जो हमारी एक कंपैशन की भावना है उससे हम देखते हैं तो फिर हम उसको सही निर्णय से गाइड कर सकते हैं। और सिर्फ हम देखते हैं कंपैशन से देखेंगे तो भी नहीं चलेगा, बुद्धि से हमें समझना है इस समय क्या राइट है। तो दोनों का संतुलन, भावना और विवेक का संतुलन, हमें आगे बढ़ना है, एम्बिशन रखना है, लेकिन साथ साथ आज जहां है उसमें संतुष्टता, कंटेंटमेंट। तो ये बहुत सारे गुण और शक्तियों का बैलेंस आता जाएगा, और जितना बैलेंस आएगा उतना सही निर्णय। स्ट्रिक्ट रहना, डिसिप्लिन रहना जरूरी है, लेकिन साथ में संबंधों में स्नेह रखना, लव और लॉ का बैलेंस, दोनों का बैलेंस होगा सही निर्णय होगा। तो गुणों का, शक्तियों का भी संतुलन, बैलेंस। अब हम देखते जो निर्णय हमने लिया उस अनुसार ही हमने देखा, जो बॉल्स हमने फेंके हैं उसके अनुसार ही हमारे पास सिचुएशंस आई है, आई है ना। कल हमने क्लियर देखा, समझा कि जो हमने पास्ट में बॉल्स भेजे हैं वो उन बॉल्स का रिटर्न, हमारे सामने सिचुएशंस आई है। तो हमें क्या करना है, अभी उन सिचुएशंस को बहुत शांति से और शक्ति से, परमात्मा के साथ से उसको फेस करना है। और हम सब का अनुभव है कि जिन शक्तियों को हमने यूज करके हिम्मत से हमने सिचुएशंस को फेस किया है, तो आज क्या हो गया है, हम बहुत शक्तिशाली अनुभवी बन गए। जितने भी आपके केसेस कॉम्प्लिकेटेड थे और आपने वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस को डील किया, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज थी, लेकिन आपने उसको बहुत हिम्मत से किया और समझ से किया। कुछ केस में ऊपर नीचे हुआ भी, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आप हिम्मत से आगे वैसे केसेस लेके आगे बढ़ते गए। अब क्या बन गए आप, अनुभवी बन गए। और अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड केस को करना ही नहीं है मुझे, अगर ये डिसीजन डॉक्टर ले लेता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है, बहुत सारी डिफिकल्टीज है, तो मुझे उसका डायग्नोसिस करना ही नहीं, आगे बढ़ेंगे, अनुभवी डॉक्टर बन सकेंगे, नहीं, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हर परिस्थिति क्या कर रही है हमें, हर सिचुएशन हमें क्या कर रही है, अनुभवी बना रही, शक्तिशाली बना रही है ना। किसी ने बहुत अच्छा कहा, आई कैन फेल एट डूइंग समथिंग बट आई एम नॉट अ फेलियर। परिस्थिति कुछ इस समय डिफिकल्ट है, तो शायद मेरा रिस्पॉन्स आज ठीक नहीं है, लेकिन कल ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं जैसे जैसे इस ज्ञान को यूज करता जाऊंगा, मैं जैसे जैसे परमात्मा के साथ संबंध को और समीप बनाता जाऊंगा, उसकी याद सदा रखता जाऊंगा, तो मुझे उनसे शक्ति मिलती जाएगी, परिस्थिति का समाधान होता जाएगा। तो हर परिस्थिति में वो हिम्मत रखने से परमात्मा की बहुत मदद मिलती है। आपके पास बहुत सुंदर अनुभव है ना, आपके पास तो बहुत सारे अनुभव पेशेंट्स के हैं ही, जहां आपने हिम्मत रखी है और आपको सुप्रीम गाइडेंस मिला है, सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम डॉक्टर आपके साथ रहा है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम हिम्मत रखते हैं तो हमें सहयोग मिलता है। सहयोग कहां से मिलता है, संबंधों में से, टीम से, आप जिस टीम के साथ रोज कार्य कर रहे हैं उनके साथ, परिवार के साथ संबंधों में हमें सहयोग मिलता है। तो सहयोग देना ही सहयोग लेने के हमें अधिकारी बना देता है। एक बहुत सुंदर, हमारे साथ में एक फैकल्टी है जो बहुत सुंदर एग्जाम्पल ये सहयोग की शक्ति के बारे में बताती हैं। तो वो बताती हैं कि वास्तव में हम जो, जैसे हम हर एक को जब भी मेडिटेशन में भी हम बैठते हैं तो हमें म्यूजिक, हम अच्छे गीतों का भी सहयोग लेते हैं, तो हम सबको कोई ना कोई रूप से कोई म्यूजिक या गीत पसंद है। पसंद है सबको, पसंद है, आपका फेवरेट म्यूजिक है, हाँ। तो कोई भी म्यूजिक आप देखें तो उसमें अलग अलग स्वर होते हैं, ऐसे है ना, अलग अलग नोट्स हैं, स्वर अलग अलग है या एक स्वर से म्यूजिक बनता है, क्या कहेंगे, अलग अलग स्वर हैं, कुछ स्वर ऊंचे हैं, कुछ स्वर नीचे हैं, है ना। लेकिन क्या करता है म्यूजिक कंपोजर, क्या करता है वो, बहुत सुंदर रूप से ये सभी स्वरों को जोड़ता है। किससे जोड़ता है, एक ताल से, रिदम से। और जब फिर उस रिदम के आधार से हम वो म्यूजिक सुनते हैं, है ऊपर नीचे सारे स्वर, लेकिन वो रिदम से सुनते हैं तो क्या लगता है हमें, म्यूजिक महसूस होता है, एंजॉय करते हैं। अब जैसे ये ताल टूट जाए तो क्या होगा, बेसुरा हो जाएगा। वही है, वही ऊंचे स्वर, वही नीचे स्वर, लेकिन वही स्वर अभी हमें सुनने नहीं, हमें लगता है बंद करो बंद करो, नहीं, कोई ऐसा गीत भी गाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, कहते हैं बंद कर लो, हमें नहीं सुनना है, क्यों, क्योंकि इस समय वो जो रिदम है वो टूट चुका है। तो हरेक व्यक्ति जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, टीम में काम कर रहे हैं, क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में, परिवार में, परिवार में भी टीम है ना, संगठन है ना, परिवार में, तो हरेक के संस्कार अलग अलग हैं। जैसे वहां स्वर अलग अलग है, यहां संस्कार अलग अलग है। हम क्या सीखते हैं परमात्मा से, परमात्मा हमें शक्ति देता है, परमात्मा हमें वो ज्ञान की समझ देता है जिससे हम वो रिदम क्रिएट करें, हम वो आपस में एक स्नेह का भाव क्रिएट करें, हरेक की विशेषता को देखना शुरू करें, हरेक को आत्मिक भाव से देखें। तो जैसे उनको एक आत्मा के रूप में हमने देखा, परमात्मा के बच्चे के रूप में देखा, तो उनको स्वीकार करना सहज हो जाता है, परिवार है ना, अपना परिवार है ना। और फिर हम उसकी मनोस्थिति को समझते हैं कि इस समय ये आत्मा क्रोध के वश है। अब हम भी तो वश होते हैं, इसलिए हम समझते हैं उस समय कितना अंदर से व्यक्ति हेल्पलेस हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, इसलिए फिर वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इसलिए फिर हम उस समय उनके लिए भी शुभ भावना रखते हैं। तो हरेक के प्रति उनके लिए शुभ भावना रखना वो एक वर्चूज के आधार से, वर्चूज देखने की जो दृष्टि है उस रिदम से जोड़ना, हरेक के कैपेबिलिटीज जो है, टैलेंट जो है, आपके टीम में हरेक की टैलेंट अलग अलग है, हरेक की कोर स्ट्रेंथ अलग अलग है, नर्स जो है, जो हाउसकीपिंग वाले स्टाफ हैं, जो और आपके सपोर्ट स्टाफ है, हरेक की अलग अलग विशेषता है, उसकी विशेषता के आधार से उसको देखना, उसको अप्रिशिएट करना, तो क्या हो जाता है, एक बहुत सुंदर रिदम क्रिएट हो जाता है। और जहां रिदम क्रिएट हो जाता है वहां म्यूजिक है, लेकिन म्यूजिक अगर आज है तो कल अगर रिदम टूट गया तो क्या होगा, क्या होगा, नॉइस। जैसे हमने एक दूसरे की कमजोरी देखना शुरू कर दिया तो क्या होगा, उनकी लिमिटेशंस को देखना शुरू कर दिया तो क्या होगा, वो थोड़ा ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, हो जाता है। चाहे हम कोई टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ कोई कार्य कर रहे हैं, कोई हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई हम कॉन्फ्रेंस प्लान कर रहे हैं, जैसे हमने एक दूसरे की लिमिटेशंस को देखना शुरू कर दिया, एक दूसरे की कमजोरियों को देखना शुरू कर दिया, वो रिदम टूट जाता है। तो म्यूजिक नॉइस में बदल सकता है, लेकिन नॉइस म्यूजिक में बदल सकता है। सिर्फ मैजिक किसमें है, हम कैसे उनके साथ संबंध में आते हैं, संगठन में हम किस दृष्टि से उनको देख रहे हैं, हम कौन से बॉल्स उनके पास भेज रहे हैं, कौन सी ऊर्जा हम उनके पास भेज रहे हैं। तो हम देख रहे हैं, जैसे यहां भी उदाहरण किसका है, यहां उदाहरण दिया हुआ है, कौन सी स्टोरी का है, याद आ रहा है आपको स्टोरी कौन सी है जी? हाँ, गोवर्धन पर्वत उठाया। तो हरेक ने क्या किया, कृष्ण के लिए तो दिखाया कि उसने दिखाया, लेकिन सबने क्या किया, सबने अपनी अपनी अंगुली का सहयोग दिया। तो अंगुली का सहयोग देना अर्थात अपनी विशेषता के आधार से सहयोग। तो हम सब जब अपना सहयोग देंगे अर्थात अपने आप को चेंज करना शुरू करेंगे, अपने आप पर काम करना शुरू करेंगे, ये सहयोग हमें देना है। जो भी परिस्थिति हो, जो भी बातें हो, उसमें हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, अपने आप को देखना और अपने आप को और श्रेष्ठ बनाना, अपनी एनर्जी को और एलिवेट करना, अपनी जो हमारी लो एनर्जी हो गई है, लो स्टेट ऑफ माइंड हो गया है, हमारे लो फीलिंग्स का एक्सप्रेशन है, उसको एलिवेट करना, अपने ऊपर काम करना शुरू हो जाएगा, तो वो अंगुली का सहयोग हम इस सृष्टि को, जैसे हमने देखा ना टिपिंग पॉइंट के लिए वेट हो रहा है, तो वो सृष्टि को बदलने में हमारा सहयोग हो जाएगा। और अंगुली जो है, एक फिंगर जो है, उसमें भी तीन भाग है, तीन भाग है, तो एक एस्पेक्ट हमें सहयोग देना है अपने आप को, अपने आप को सारा दिन हम बीच बीच में चेक करते रहे। इसलिए यहां हम ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर एक टूल दिया है, जहां हम हर घंटे अपने आप को चेक करते हैं और अपने आप को शिफ्ट करते हैं। अगर उस बॉडी कॉन्शियसनेस में है, उस नेगेटिव इमोशंस में है, तो शिफ्ट करते हैं। दूसरा सहयोग हमें हरेक के प्रति देना है, तो हरेक के प्रति शुभ भावना रखना, कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमारी दादी जी, गुलजार दादी जी थे, तो दादी जी ने एक संगठन में बहुत अच्छी बात कही। ऐसे ही एक संगठन उनके सामने बैठा हुआ था, तो दादी जी ने उनको कहा कि आपको हरेक के साथ मुस्कुराकर मिलना है, कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, ये सहयोग दे सकते, दे सकते हैं। पेशेंट्स के साथ, आप अपने टीम के कलीग्स जो हैं, आपके जो आपका टीम है, सपोर्ट स्टाफ है, आपके नर्सेज हैं, फिर आपके साथ ही डॉक्टर्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, सबके साथ मुस्कुरा के मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन हर बार मुस्कुरा के मिलना, ये सहयोग दे सकते हैं, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। दूसरा दादी ने कहा कि आप मुस्कुरा के मिलना, और हरेक को जब आप मिलते हैं तो शरबत पिलाना। अब हरेक सोचने लगा कि हम अपने पास ऐसे शरबत कैसे रख सकते हैं जो हरेक आए तो उसको पिलाएं। दादी ने कहा दो मीठे बोल का शरबत पिलाना। पिला सकते हैं, पिला सकते हैं। जो भी पेशेंट से आप मिलते हैं उनका जो भी केस है, जो प्रॉब्लम है, वो तो आप सुनेंगे, लेकिन उसके पहले दो मीठे बोल उनके साथ बोलें। जो भी आपका सपोर्ट स्टाफ है उनके साथ आप कारोबार तो करेंगे, लेकिन उसके पहले दो मीठे बोल, आप कैसे हैं, कैसे कुछ, जो भी आपको उस समय फील होता है वो दो मीठे बोल का शरबत हमें पिलाना है। तो फिर दादी ने कहा सिर्फ शरबत तो नहीं पिलाना है, कुछ खिलाएंगे भी ना। तो दादी ने कहा दिल खुश मिठाई खिलाना, खुशी की बात, खुशी की लेन देन, एक सकारात्मक ऊर्जा की लेन देन, शुभ भावनाओं की लेन देन जरूर करना। तो ये सहयोग हम सबको दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। डिफिकल्ट है ये सहयोग, डिफिकल्ट है। और धीरे धीरे जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो रोज हम मेडिटेशन में मनसा के द्वारा, अपने मन के द्वारा ये सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, जिनको हम बहुत सुंदर शब्दों में परमात्मा हमें सिखाते हैं, मनसा सेवा, सर्विस थ्रू द माइंड। तो एवरी डे आप एक डॉक्टर के रूप में अगर आप अपने पेशेंट्स को वो पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी देते हैं, जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं उनके बारे में भी मेडिटेशन में सोचकर, उनको इमर्ज करके, उनको भी आत्मिक स्वरूप में देखकर, उनको भी ये शुभ भावनाओं की ऊर्जा देते हैं, विश्व को भी हम ये देते हैं। तो ये सहयोग जब हम देते हैं तो क्या होगा, जितना सहयोग हम देते जाएंगे समय पर हमें सहयोग मिलता ही रहेगा। और हम देखते हैं कि ये दो शक्तियां जो हमने देखी, सामना करने की शक्ति और सहयोग की शक्ति, ये हमें परिस्थितियों का समाधान करने में मदद करती है। और ये जो लास्ट की दो शक्तियां हैं, जहां हमें समेटने की शक्ति, अर्थात हम देखते हैं जो विस्तार है उसको संकीर्ण करना, अंतर्मुक्ता की शक्ति, जो कछुआ दिखाया है। तो मेडिटेशन में भी हम पहला स्टेप क्या करते हैं, हम मन बुद्धि को क्या करते हैं, बाहर से थोड़े समय के लिए समेटते हैं, हम थोड़े समय के लिए अपने आप में अपने मन को अंतर की ओर ले जाते हैं। तो इंट्रोवर्टनेस, द पावर टू रिमेन इंट्रोवर्टेड, अंतर्मुखी, अंतर माना अंदर में, तो मुख अंदर में, अर्थात हर फिजिकल सेंस ऑर्गन को हम अंतर की ओर दिशा देते हैं, चैनलाइजिंग दी सेंस ऑर्गन्स विद इन। तो अब जैसे नेत्र से हम देख रहे हैं, लेकिन अंतर की ओर देखते, अपने आप को देखते, अपने हमने कैसे उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया, हमने उस व्यक्ति के लिए क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, उसको देखते अंतर्मुखी। और फिर हमें जो उसमें चेंजेस लाना है वो चेंजेस लाते हैं। तो हम देखते हैं कि अंतर्मुक्ता की शक्ति, जो हमने देखा कि हमें दिया है ट्रैफिक कंट्रोल का, हर घंटे एक मिनट, और फिर सारे दिन में भी पांच ऐसे समय है जब एक पूरा गीत भी बजता है। तो सुबह हमारा 7 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उसके बाद 10:30, फिर 12 बजे, 5:30, 7:30। लक्ष्य ये है कि सारे दिन में वो कुछ आत्मा अपने अंदर एक साइलेंट ब्रेक ले, जैसे हम टी ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक लेते हैं, लेते हैं ब्रेक, क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं, आप तो डॉक्टर्स हैं, क्यों लेते हैं, हाँ शरीर को फिर से हम सशक्त करते हैं, री एनर्जाइज करते हैं, इसको रिप्लेनिश करते हैं, ऐसे ही मन की स्थिति को बीच बीच में री एनर्जाइज करना, रीसेट करना, तो वो एक बहुत सुंदर टूल है। तो अंतर्मुखी अर्थात अपने आप को देखना, अपने आप को समझना, और जैसे जैसे हम अपने आप को देखते जाते हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे सामने आते हैं, क्योंकि जब हम स्वयं को देखते हैं तो वहां चेंजेस लाना सहज हो जाता है, सहज होता है ना, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में ना, हम स्वयं की मनोस्थिति हमारे इन्फ्लुएंस में। हम सिर्फ बाहर में देखते हैं तो क्या होता है, वहां तो सिर्फ हम कंप्लेन कर सकते हैं, हम फिर वर्णन कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन तो कुछ कर नहीं सकते हैं। वहां हमें क्या करना है, वहां हम अपने आप में चेंजेस लाकर उस ऊर्जा के द्वारा उस सिचुएशन को हमें मदद करनी है। इसलिए अंतर्मुक्ता की ये शक्ति है, अपने आप को देखना, अपने स्वयं को देखना, अपने आप को सशक्त रखने की जिम्मेवारी लेना। जैसे आज आप सब डॉक्टर्स ने बहुत बड़ा कार्य किया है, धीरे धीरे मीडिया ने भी और आप सभी डॉक्टर्स ने सबको एडुकेट कर लिया है। अब सबको अवेयरनेस है हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए अवेयरनेस है ना पेशेंट्स को, तो उसमें आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सहयोग है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आपने सबको बहुत अच्छी तरह से एडुकेट कर लिया और मीडिया ने भी उसको आगे रखा है। तो जैसे हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो बाकी के पैरामीटर्स हैं, अभी सब पेशेंट्स जो हैं, सभी लेमन भी हैं, वो भी जानते हैं कि हमारा B12 ठीक होना चाहिए, हमारा D3 ठीक होना चाहिए, हमारा कैल्शियम ठीक होना चाहिए, तो पैरामीटर्स को वो भी खुद चेक कर लेते हैं। हाँ, तो अवेयरनेस हो गई। तो ये शरीर को स्वस्थ रहने की जिम्मेवारी ले ली, अंतर्मुखता अर्थात अपने मन की स्थिति को सदा सशक्त रखने की जिम्मेवारी ले लेना, अपने आप को हमेशा लाइट, इजी, पॉजिटिव, पावरफुल रखने की जिम्मेवारी लेना। तो धीरे धीरे मेडिटेशन से हम अंतर्मुखी होते जाते हैं और हम अंतर में जब चाहें अपने आप के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने आप को सशक्त रख सकते हैं, अपने आप के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, अपने आप को, अपनी सेल्फ एस्टीम को स्ट्रेंथन करते हैं। और हम देखते हैं कि जितना हम अंतर्मुखी होते हैं उतना समेटना सहज हो जाता है, पावर टू पैकअप। तो यहाँ क्या दिखाया है, तैयारी। तो सब तैयारी हो रही है आपकी जाने की, आपको जाना है यहाँ से, कल जाना है, पक्का जाना है, यहाँ रह जाना है। आप में से कितने हैं जिनको रह जाना है यहाँ, मन तो होता है रह जाने का, अच्छा प्रैक्टिकल है ना डॉक्टर्स, इसलिए मन है, लेकिन जानते हैं वहां बहुत सारे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं आपके लिए, बहुत सारी सेवा है आपके लिए, तो जाना जरूर है, लेकिन हम जैसे उस यात्रा के लिए तैयार हैं, हम यहाँ बहुत खुश हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें आगे कल जर्नी में जाना है, तो उसकी तैयारी करनी। आप में से कई आज भी जा रहे हैं, जो आज जा रहे हैं वो हाथ ऊपर करें, अच्छा थोड़े आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं हाथ ऊपर करें, अच्छा। तो हम देखते हैं कि जैसे हमें पता है तो हम थोड़ी तैयारी करना शुरू करते हैं, जो आज शाम को जा रहे हैं तो क्या होगा, दोपहर के बाद थोड़ी पैकिंग शुरू कर लेंगे, रेस्ट टाइम में भी हम थोड़ा पैक कर लेंगे, कल जा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, रात को या सुबह मेडिटेशन के बाद थोड़ा पैकिंग करेंगे, तैयारी करेंगे। तो ऐसे ही हमें बताया गया कि हमारी एक और यात्रा भी है, कौन सी यात्रा है, हमने सीखा ना, और एक यात्रा कौन सी है, जीवन की भी यात्रा है, ये लाइफ पे एक जर्नी है, तो इस लाइफ की जर्नी का भी एंड है, एंड है ना, एंड माने ये जर्नी का एंड, फिर इसके बाद नई जर्नी शुरू होगी। तो यहाँ भी हमारे पास टिकट है, रिटर्न टिकट है, सबके पास है, वेटिंग लिस्ट है लेकिन है जरूर। तो हमें जाना है तो क्या ले जा सकते हैं, वो भी हमें बताया गया, क्या ले जा सकते हैं जी, अच्छे कर्म और संस्कार और दुआएं, प्यार, शांति, जो भी आत्मा के गुण है ना, वो जितना आपने अक्यूमुलेट किया ना सब जा सकता है आपके साथ। जितना यहां आपने काम किया, जितना अपने को सुंदर बनाया, जितना अपने आप को शक्तिशाली बनाया, जितना अपने आप को यहां शांत बनाया, जितनी भी वो शक्ति को आपने अपने अंदर भरा, वो सब आपके साथ चलेगी, क्योंकि ये सारे खजाने इटर्नल है, अविनाशी खजाने। तो उसमें जितना आपको भरपूर होना है, परमात्मा ने अपना भंडारा खोल दिया है, भोला भंडारी कहते हैं ना ईश्वर को, तो भंडारा खोल दिया है, उस पर कोई ताला नहीं, आप जितना चाहें आप परमात्मा को प्यार से याद करते हुए उनसे ये शक्तियों को अपने अंदर भर सकते हैं। तो समझदारी क्या होगी, जो चीज हम ले जा सकते हैं उसको हम भरते जाए ना, जो चीज यहां हमें इस यूज करना है जर्नी ऑफ लाइफ में उसको भी हमें अक्यूमुलेट करना है। लेकिन हमने क्या देखा कि वो चीजें तो हमारे साथ सिर्फ यहां रहेंगी, लेकिन वो चीजों को हमने प्राप्त करने के लिए जो कर्म किए वो हमारे साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजों का ध्यान देना कि हमें जो आवश्यक है साधन चाहिए, जो भी कारोबार के लिए हमें साधन चाहिए, क्लिनिक है उसको भी आपको एक्सपैंड करना है, जो भी कारोबार आपको अपना करना है उसके लिए भी तो धन चाहिए, साधन चाहिए, तो वो तो हमें प्राप्त करना ही है, उसके लिए जरूरी है, हमें पुरुषार्थ करना है, लेकिन साथ साथ क्या करना है, साथ साथ क्या करना है, हमें बहुत सारे सूक्ष्म खजाने प्राप्त करने हैं। तो धन तो आपको कमाना है, लेकिन कैसे कमाना है हमें बताया गया ना, कैसे कमाना है, दुआओं से। तो हर पेशेंट की दुआ आपको लेनी, हर पेशेंट की, हर एक से, हर संबंध में, जिससे भी हम संबंध में आते हैं, सिर्फ पेशेंट नहीं लेकिन घर में जब हम संबंध में आते हैं, हर संबंध में हमें दुआएं लेनी है, दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है। तो इससे हमारे संबंध क्या होंगे, संबंध भी शक्तिशाली होंगे और आत्मा के पास बहुत सारे खजाने अक्यूमुलेट होते जाएंगे, हमारा आत्मा का बैंक बैलेंस बहुत बढ़ता जाएगा और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, वहां कोई चेकिंग नहीं होगी, नहीं, यहां तो बैंक बैलेंस में भी आपको कोई अपर लिमिट होता है, लिमिट होता है ना, उसके बाद टैक्स वगैरह लगता है, होता है, लेकिन यहां आप जितना जमा करना चाहे जमा कर सकते। और हमें तो बनना ही अभी सत्युगी आत्मा है, तो सत्युगी आत्मा बनना है तो कौन से गुण और शक्तियों को अपने अंदर और अक्यूमुलेट करना है, कुछ गुण और शक्तियां हमारे अंदर है लेकिन जो गुण और शक्ति हमें लगता है उसकी बहुत कमी है, उसको और अक्यूमुलेट करना है। तो उस जीवन यात्रा के लिए भी हम तैयार हैं, समेटना और वर्तमान में रहना, समेटना अर्थात हर बार हर समय वर्तमान में रहना, क्योंकि हमें सिखाया गया ना कि वर्तमान में हमारे पास चॉइस है, पांच जो है अब उसको तो चेंज नहीं कर सकते, उसकी रिजल्ट हमारे सामने आ रही है, उसको स्वीकार करना, उससे सीख सकते हैं, हमने सीख लिया कि अच्छा ये कुछ हुआ है हमसे गलत, तो अब हमें क्या करना है, तो पास से सीखना है, अनुभवी बनना है। फ्यूचर जो है उसका आधार क्या है, फ्यूचर आप यहां आने के पहले जब आपको निमंत्रण मिला था इस कार्यक्रम का, तो आपके बहुत सारे कमिटमेंट्स थे, कमिटमेंट्स थे ना, आप सभी डॉक्टर्स हैं, सभी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बहुत सारी आपके पास है, तो बहुत सारे कमिटमेंट्स में से भी आपने टाइम निकाला, ये डिसीशन आपने पास्ट में लिया यहां आने के पहले, उस डिसीशन का फल आपको कहां मिला, वर्तमान में। पास्ट के जो आपने डिसीशन लिए कि आपको टाइम निकालना है, आप लीव लेना है, एडजस्ट करके यहां पहुंचना है, ठीक है, तो वो डिसीशन का फ्रूट फल आप अनुभव कर रहे हैं यहां अभी वर्तमान में। आज जो डिसीशन लेंगे उसका फल कहां मिलेगा, उसका फल कहां मिलेगा, फ्यूचर। तो हमें इस वर्तमान को बहुत अच्छी तरह से वैल्यू देना है, इंजॉय करना है, इसके हर सेकंड को, समय का जो खजाना है उसमें हर सेकंड को, हर थॉट को, हर फीलिंग को हमें बहुत अच्छी तरह से चूज करना है, ताकि हम वर्तमान में जितना रहते हैं उतना हम अपने जीवन को बहुत सक्षम और वेल्दी बनाते हैं। तो आत्मा जब इस जीवन यात्रा को पूरी करके आगे जाती है तो आत्मा भरपूर होकर जाती है, जैसे कहते हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है, वो किसके लिए है, स्थूल चीजों के लिए, फिजिकल चीजें, वो नहीं चलेगी, तो इसलिए वो राइट है, लेकिन आत्मा तो जो जमा करना चाहे जमा कर सकती है। तो ये सारी शक्तियां आपके अंदर आती जाएगी, शक्तियां जो है ये परमात्मा हमारे अंदर भरता जाएगा, जैसे आप मेडिटेशन करेंगे अक्यूमुलेट होते जाएंगे और इसको आप अनुभव करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल सिचुएशंस आपके सामने आएगी तो ये शक्तियां जो है अनुभव होगी। और ये अष्ट शक्तियों का ही प्रतीक है जो हमने नवरात्रि में नव दुर्गा को, अंबा को, अष्ट भुजाधारी अंबा दिखाया है, नहीं? महिमा करते हैं। तो हम तो जानते हैं एक फिजिकल बॉडी के एनाटॉमी को, तो हम जानते हैं कि दो ही हाथ हो सकते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी आत्मा के अंदर जैसे शक्ति बढ़ती जाती है तो आत्मा सशक्त अंदर से होती जाती है। और ये शक्तियां हमें दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में सिचुएशंस को हैंडल करने में, सॉल्यूशंस क्रिएट करने में मदद करती। तो ये जो भुजाएं हैं वो प्रतीक किसका है, शक्ति का। छोटे बच्चे को भी अगर अपनी शक्ति दिखानी होगी तो क्या करेगा, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, ऐसे कहेंगे ना। और मदद का, मदद के लिए भी हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग हैंड, मदद का हाथ, सहयोग का हाथ। तो ये शक्तियां हमें रोज मदद करती, हमारे पास्ट के कर्म जब हमारे सामने आते हैं, वो जो रिजल्ट, जो ब्लैक बॉल्स हमने भेजे हुए हैं, वो सामने जब ब्लैक बॉल्स आते हैं तो ये शक्तियां हमें मदद करती हैं कि हम फिर व्हाइट बॉल्स भेजें, हम वो श्रेष्ठ संकल्प, हम वो श्रेष्ठ कर्म कर सके। तो ये शक्तियां हमें रोज मदद करेंगी। जैसे हमने देखा कि इसमें सहन शक्ति और समाने की शक्ति, वो किस में हमें मदद करेगी? संबंधों को मधुर बनाने में। जो हमने देखा कि हमारी परख शक्ति है और निर्णय शक्ति, वो कारोबार में हमें सहयोग देगी। और जो हिम्मत की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, सहयोग की शक्ति है, सबको एक रखने की शक्ति जो है, वो हमें परिस्थितियों में मदद करेगी। और हमने देखा अंतर्मुखता की शक्ति, जहां सारे दिन में बीच बीच में हम अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपने आप को उस परमात्मा से कनेक्ट करके अपने अंदर उन गुणों और शक्तियों को भरेंगे, अपने आप में चेंजेस लाएंगे, अपने आप को देखते रहेंगे कैसे और हमें क्या चेंज लाना है, वो चेंजेस को एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने अंदर एक्सपीरियंस करेंगे, उसको अपने जीवन में लाएंगे। तो अपने आप के साथ लोग काम करेंगे वो शक्ति, और समेटने की शक्ति, ये हमारे अपने सेल्फ प्रोग्रेस, अपने आप को और सुंदर बनाने में मदद करेगी। अपने अंदर में जो हमारे अंदर लो स्टेट ऑफ माइंड है, सेल्फ डाउट है, सेल्फ गिल्ट है, ये जो अंतर की कमजोरियां हैं, उसको हील करने में। तो हम देखते हैं हमारे चैलेंजेस ये चार एरिया से ज्यादा आते हैं, तो ये शक्तियां हमें उन चैलेंजेस को डील करने में और वो अंतर की हीलिंग में हमें मदद करती हैं। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन एक्सपीरियंस करते जाते हैं, ये शक्तियां हमारे अंदर भरती जाती हैं। परमात्मा हमें कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिवान हूं, तो हम उसके बच्चे कैसे हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात हर बार समर्थ, हर गुण और शक्ति में पावरफुल। जो समय पर जो शक्ति हमें यूज करना है, वो शक्ति हम यूज कर सकेंगे। तो एक तो है कि हम योग में जितना हम मेडिटेशन का अनुभव करते हैं, वो शक्ति हमारे अंदर अक्यूमुलेट होती जाती है। लेकिन परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर एफर्मेशन कहो, यहां हम शब्द यूज करते हैं डेली हमारे स्पिरिचुअल स्टडी में, स्वमान। तो परमात्मा हमें बहुत श्रेष्ठ स्वमान देता है कि मैं अगर सर्वशक्तिवान हूं तो तुम भी बच्चे मेरे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो हम शक्तिशाली हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो हर गुण और शक्ति हमारे अंदर है, क्योंकि ये शक्तियां हमारे वर्से के रूप में, इनहेरिटेंस के रूप में। तो चलिए हम फिर से परमात्मा से वो कुछ समय के लिए मिलन का अनुभव करें, इन शक्तियों को अपने अंदर भरपूर करें कुछ समय के लिए। हम फिर से अपने आप को देख रहे हैं, मन बुद्धि को अंतर की ओर दिशा देते हैं, अपने सुंदर दिव्य स्वरूप को देख रहे हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूं। मन की आंखों से इस आत्मिक स्वरूप को देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। शरीर से अलग, ये शरीर रूपी गाड़ी से अलग, मैं आत्मा ड्राइवर मस्तक के मध्य में विराजमान हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। सारे दिन में मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या निर्णय लेना है, मुझे किस इमोशन को क्रिएट करना है, किस भावना को क्रिएट करना है, उसके लिए मैं मालिक हूं। मेरे पास कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। मैं शक्तिशाली हूं। इस आंतरिक शक्ति को अनुभव करते हुए हम कुछ समय के लिए मन के द्वारा उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास पहुंचते हैं। मन की आंखों से ये सुंदर यात्रा आरंभ करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि सुंदर आत्मा उस परम धाम में पहुंच रही है। आवास की दुनिया से न्यारा होकर उस प्रकाश की दुनिया में पहुंचते हैं। मन की आंखों से विजुलाइज करते हैं उस शांति की दुनिया को, सुनहरी लाल प्रकाश का वो महातत्व। यहां मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के समीप हूं। मन की आंखों से विजुलाइज करें सुप्रीम लाइट को, परमपिता परमात्मा को, जो मुझ आत्मा का मात पिता है, वो भी मेरे समान ही एक डिवाइन लाइट है, जिसकी आभा चारों तरफ फैल रही है। परमात्मा पिता की वो डिवाइन एनर्जी अनलिमिटेड है। जैसे ही हम ईश्वर के समीप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, परमात्मा की दिव्य शक्तियां एक लेजर बीम के रूप में मुझ आत्मा के अंदर समा रही है। परमात्मा पिता सर्वशक्तिवान है, वो मुझे बहुत प्यार से कह रहा है कि बच्चे तुम भी मेरे जैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान हो। हम जैसे ही उनको याद करते हैं तो परमात्मा की शक्तियां हमारे लिए उपलब्ध हो जाती है। हम भी अपने आप को अंतर से शक्तिशाली महसूस करते हैं। परमात्मा पिता जो प्यार का सागर है, सुख का सागर है, उनसे ये असीम प्यार का अनुभव हमारे मन में, हृदय में, परमात्मा का ये निर्मल प्यार, शुद्ध प्यार, अनकंडीशनल लव समा रहा है। परमात्मा का प्यार हमें अंतर में कितना सुकून दे रहा है, सिक्योर फील कराता है, प्रोटेक्टेड फील कराता है। परमात्मा मुझे शक्तिशाली बना रहा है। मैं अपने आप को परमात्मा की याद में समर्थ शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। वो सर्व शक्तियां मेरे अंदर समा रही है। अब जीवन में जो भी बातें मेरे सामने आएगी, जो परिस्थितियां आएंगी, कुछ संबंधों में बातें आएंगी, मैं सर्वशक्तिवान पिता को साथी बनाकर हर बात को सहज ही पार कर लूंगा। हिम्मत का मेरा एक कदम आगे और शिव बाबा की हजार भुजाएं मेरे साथ होंगी। परमात्मा की पदम गुणा मदद मेरे साथ है। शिव बाबा ने अपना वरदानों का हाथ मेरे मस्तक पर रख दिया है। मुझे प्यार से कह रहा है कि मीठे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मुझे सिर्फ याद करना है और मैं सर्वशक्तिवान सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम डॉक्टर, तुम्हारा साथी बन जाऊंगा। हर कार्य सहज हो जाएगा। परमात्मा के इस प्यार को अपने अंदर समाते हुए, परमात्मा की दिव्य शक्तियों को एक सुरक्षा कवच के रूप में अनुभव करते हुए, हम अपने आप को फिर से यहाँ इस संगठन में देख रहे हैं।